मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। AFEIS के आज 4 जून 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों एक छोटा सा सजेशन है और सजेशन ये है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, यानी 1-1.5 साल पहले इसकी बहुत चर्चा हो रही थी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी कि देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक आधारभूत आय उपलब्ध कराई जाए, यानी कि कुछ न कुछ आय तो उसकी होनी चाहिए और ये सरकार अपनी तरफ से उपलब्ध कराती है कैश फॉर्म में, भले ही आप कुछ काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। खासकर ये उनके लिए होता है जो काम नहीं कर रहे, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल बी बेसिक इनकम, राइट। मुझे लगता है कि अभी कोरोना के माहौल में जो धीरे धीरे बेरोजगारी फैलेगी और अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त होती जा रही है, उस दौर में UBI पर फिर से बात होगी और अखबारों में इसको लेकर के थोड़ी सी सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। और अभी अभी ध्रुव राठी ने इस पर YouTube पर अपना एक प्रोग्राम डाला है इस विषय पर, UBI पर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर। उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से इसे समझाने की कोशिश की है, तो मेरा सजेशन है कि यदि आप उचित समझें तो उनका यह YouTube पर प्रोग्राम आप देख सकते हैं। और हमारे जो ऑनलाइन के पेड स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि इस पर बकायदे एक लेक्चर आप सबको प्रोवाइड किया गया है, आप उसे भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं वह है कृषि क्षेत्र में सुधार। लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं क्योंकि उनकी संख्या भी आज कम नहीं है। फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात है, अखबारों ने भी इसे वेलकम किया है कि जो निसर्ग चक्रवाती तूफान था जो इतनी हाई स्पीड का था, 120 किलोमीटर की स्पीड बहुत तेज गति मानी जाती है, उससे जितनी आशंकाएं की जा रही थी तबाही की, कम से कम हमारा देश बच गया है। अब वह तूफान कमजोर पड़ गया है और धीरे धीरे अब वह खत्म सा हो जाएगा, है ना। तो एक छोटी सी सूचना, और निसर्ग क्या है इसके बारे में मैं आपको कल बता ही चुका हूं। कल कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट की मीटिंग के बारे में आप जानते हैं कि कैबिनेट क्या होती, कुछ ही दिनों पहले मैंने इसके बारे में बात की थी। उसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं महत्वपूर्ण निर्णय, थोड़ी सी मैं उसकी जानकारी देना चाहूंगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में थोड़े से मायने रखते हैं दोस्तों, एक तो यह कि जो हमारा कलकत्ता बंदरगाह ट्रस्ट है उसका नाम बदलने की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है और अब उस बंदरगाह पोर्ट का नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, यह उसका नाम होगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बेसिकली उस समय जो भारतीय जनसंघ पार्टी हुआ करती थी उसके लीडर थे और बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही सम्मानित लीडर माने जाते थे, और वो जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में बकायदे मंत्री भी रहे, इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर। आप सोच करके देखिए कि जैसा कि मैंने कहा कि जनसंघ के वो लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के थे, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में ये मंत्री थे, तो उस समय की हमारी डेमोक्रेसी क्या थी, कैसी थी, इससे थोड़ी सी आपको जानकारी, इसका थोड़ा सा फैब्रिकेशन, बुनावट या उसकी जो फीलिंग है वो आपको मिलेगी। बेसिकली श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कोलकाता के थे, 1901 में उनका जन्म हुआ था और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया। तो चूंकि वो कलकत्ता के थे, वेस्ट बंगाल के थे, तो इसलिए कलकत्ता एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखा गया है। दोस्तों कैबिनेट ने जो एक और डिसीजन लिया है वो फार्माकोपिया आयोग के गठन की बात कही है। ये फार्माकोपिया, फार्मा मतलब आप मेडिसिन, औषधि, भेषज आप जानते हैं, तो ये कमीशन कभी कभी प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली जो होम्योपैथ है और जो हमारे इंडियन मेडिसिन है ना, जो आयुर्वेद वगैरह के जो हमारे हैं, उनके बारे में रिसर्च होंगी, उनको ये देखेगा। जो हमारा आयुष मंत्रालय जो बना हुआ है ये उसके अंतर्गत है, और गाजियाबाद में अभी हमारे जो 2 लैब हैं उनका विलय कर दिया गया है, और विलय इसलिए किया गया है कि दोनों मिलकर के काम करेंगे तो इससे जो हमारा ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सकेगा। जो धन एलोकेट किया जाता है दोनों को इंटीग्रेटेड कर देने के बाद उसका भी एक बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको भी हम अच्छे तरीके से उपयोग में ला सकेंगे, और दवाइयों के जो स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं, जो मानक तैयार किए जाते हैं, उसमें भी काफी कुछ सुविधा हो जाएगी। तो फार्माकोपिया आयोग, ये थोड़ा सा आपके ध्यान में रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अमेरिका में आप देख रहे हैं कि स्थिति कितने दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। इसके बारे में हम लोगों ने शुरू में चर्चा की थी। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जो वेद प्रताप वैदिक जी का है। आप लोग या इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा, है ना। उस बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अमेरिका की स्थिति को स्पष्ट किया है कि किस तरीके से वहां कैसे अफ्रीकी पहुंचे और उनके साथ किस तरह के भेदभाव होते रहे हैं। इसमें दो लाइनें मैं डेफिनेटली अंडरलाइन करना चाहूंगा, आप पढ़ते समय उस पर ध्यान दें। एक तो अब्राहम लिंकन, जो वहां के राष्ट्रपति थे और उन्होंने रंगभेद नीति के खिलाफ कानून पारित किया था, सच पूछे तो जो उनकी हत्या की गई थी, कहा जाता है कि उसके पीछे यही कारण था कि उन्होंने ये कानून पारित कराया था, क्योंकि श्वेत नहीं चाहते थे कि इस तरह का कानून पारित हो। इसको लेकर के उधर जो साउथ ऑफ अमेरिका का जो हिस्सा है वहां गृह युद्ध की स्थिति तक बन गई थी। 1865 में ये पारित हुआ। और इसके बाद दूसरे जो लीडर हैं वो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनकी 1968 में हत्या कर दी गई थी। जब हम लोग 4-5 साल पहले अमेरिका गए थे तो उस मैदान का हम लोगों ने स्पेशली विजिट किया था, जहां मार्टिन लूथर किंग ने एक बहुत बड़ी जनसभा आयोजित की थी और उसमें बहुत ही जोशीला भाषण दिया था। मेरी इच्छा थी कि हम उस मैदान को देखने जाएं, तो मैं और मैडम प्रीति अग्रवाल उस मैदान पर स्पेशली, मतलब आप समझिए कि बड़ी विचित्र सी मानसिकता होती है कि हम उस मैदान को देख लें, उस जमीन पर चले जाएं, बस इसी भावना से हम लोग गए थे। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो पढ़ते समय आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दोस्तों, जो आज का मुख्य विषय मैंने कहा उस पर मैं आता हूं, और वह है कृषि क्षेत्र में सुधार। कृषि क्षेत्र में सुधार के बारे में मैं कुछ बहुत विस्तार से बताने नहीं जा रहा हूं। इनफैक्ट आज के अखबारों में काफी कुछ उसके बारे में लिखा गया है, और अभी तो केवल उन अध्यादेशों की चर्चा की गई है जो इसके लिए लाए गए हैं, है ना। अभी हमारे जो कैबिनेट है उसने अध्यादेश की मंजूरी दे दी है। अब बाकायदे या बाद में जो भी कैबिनेट ने फाइनल किया है वो हमारे पार्लियामेंट में आएगा और पार्लियामेंट से पारित होगा, क्योंकि ये इसका संबंध एक्ट से है। तो मैं उनकी चर्चा नहीं करने जा रहा हूं। इससे रिलेटेड जो बहुत ही जो बेसिक बातें हैं मैं केवल वो आपके सामने रखूंगा। अभी जो भी अध्यादेश लाए गए हैं आप उन्हें देख लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे यहां जो आवश्यक वस्तु अधिनियम था उस तक में तब्दीली कर दी गई है और उसमें से कुछ वस्तुओं को निकाल दिया गया है बकायदे की। अब ये चीजें आवश्यक वस्तु के तहत नहीं आएंगे। अगर आप सुनेंगे तो लगेगा कि अगर ये आवश्यक वस्तु नहीं है तो कौन है। खाद्यान्न निकाल दिया गया है, तिलहन निकाल दिया गया है, दलहन निकाल दिया गया, आलू निकाल दिया गया, प्याज निकाल दिया गया, आवश्यक वस्तुओं से बाहर कर दिए गए हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण है। डेफिनेटली सरकार ने अभी जो अध्यादेश के बारे में निर्णय लिया है इस पर आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे, आर्टिकल्स भी आएंगे। तो दोस्तों, मैं उसके बारे में कुछ भी बातें करने नहीं जा रहा हूं। मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जब भी आप तैयारी करें और कोई टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लगे तो आपको हमेशा चाहिए कि आप बकायदे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखें और ये जानने की कोशिश करें कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि देखिए, आंसर लिखना ही सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती है। और जब आपके दिमाग में उस टॉपिक का एक फ्रेम सा बन जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसके अनुकूल जब फ्रेम बन जाएगा तभी आप उसके बहुत अच्छे आंसर दे सकेंगे। तो देखिए, आपको मैं दो क्वेश्चंस बता रहा हूं कि किस तरह के पूछे गए। 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो एपीएमसी को लेकर के था, कृषि उत्पाद बाजार समिति। इसके बारे में आज अखबारों में काफी कुछ है और इसकी जकड़ को ही कम करने के लिए अभी सरकार अध्यादेश लेकर के आई है। प्रश्न देखिए, एक दृष्टिकोण यह भी है कि राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित कृषि उत्पादन बाजार समितियों ब्रैकेट है एपीएमसी ने भारत में न केवल कृषि के विकास को बाधित किया है बल्कि वे खाद्य वस्तु महंगाई का कारण भी रही हैं। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन। ठीक है, अभी जो अध्यादेश लाया गया है उसमें इसी का हल ढूंढा गया है कि इनकी जो पकड़ है किसानों पर वो कम हो सके, यूं कह लीजिए कि किसान इनकी गुलामी से मुक्त हो सके। दोस्तों, अब आप देखिए कि एक और जो प्रश्न पूछा गया है जो 2015 में है, वो प्रश्न क्या है। भारत में कृषि भूमि धारणों के पतोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिए कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संविदा कृषि को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या संविदा कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके पक्ष विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए यहां है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है और ठीक इसी तरह से लैंड लीजिंग की बात की गई है, और अभी जो अध्यादेश लाने की बात हो रही है उसमें यही है कि जो हमारा संविदा कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसको सिस्टमेटिक बना दिया जाए, किसान लैंड लीजिंग दे सकें उसको कर दिया, ठीक कर दिया जाए, मतलब उसको एक कानूनी आधार दे दिया जाए। तो दोस्तों जब आप एक बार प्रश्नों के ट्रेंड को समझ लेते हैं तो आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। इनफैक्ट जो कहा जाता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए मेहनत की जानी चाहिए, तो मेहनत का अर्थ यही होता है, मेहनत का अर्थ ये नहीं कि एक दिन में हम केवल 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करें। हाँ, यहां मैं अपने जो ऑनलाइन पेड ऑनलाइन क्लासेस के जो पेड स्टूडेंट हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि दोस्तों इन सभी टॉपिक्स पर आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक लेक्चर बकायदे कृषि उत्पादन विपणन समिति कानून के नाम से है, एक लेक्चर बकायदे राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के नाम से है, क्योंकि ये मार्केट इसी के उस विरोध में, एक तरह विरोध में नहीं, आपके लिए सिस्टम को थोड़ा सा ठीक करने के लिए लाया गया था। ठीक इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उस पर भी लेक्चर है, तो प्लीज आप उन लेक्चर्स को भी अच्छे तरीके से सुन लें, समझ लें। एक बार जब आप उसे सुन और समझ लेंगे तो पाएंगे कि अब जो सरकार ने अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है और जो लेकर के आएगी और इसके बाद इस पर जो कुछ भी आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स लिखे जाएंगे, वो सब आपके लिए कितने आसान हो जाएंगे और कितने उपयुक्त हो जाएंगे। तो मित्रों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। प्रकृति आनंद पटना बिहार से, नितिन कुमार अमरोहा उत्तर प्रदेश से, धनंजय खत्री, मोहम्मद रफी, संकेत उदवंत नासिक महाराष्ट्र से, उमेश तालेकर औरंगाबाद महाराष्ट्र से, इमरान खान मवाना उत्तर प्रदेश से, दीपक झा ललितपुर उत्तर प्रदेश से, मानस झा दिल्ली से और सोमदत्त हिमाचल प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।